निक को पूरे रास्ते प्रियल की ही फिक्र सता रही थी। वो बहुत तेजी से कार चला रहा था, इस वजह से उसकी कार एक ट्रक से भिड़ते भिड़ते बच गई। ट्रक ड्राइवर ने अपना मुंह बाहर निकालकर बांग्ला में कहा, आपने की मद्यपान करो छे। उसके कहने का मतलब था कि साहब पी रखा है। निक ने गाड़ी का शीशा नीचे करके कहा, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में हूं। ट्रक ड्राइवर ने कहा, समस्या नहीं, और अपने ट्रक को आगे बढ़ा लिया। उसके हटने के बावजूद निक अभी तक वहीं खड़ा था। आज उसकी लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता था। निक ने कहा, ओ गॉड, अगर मुझे कुछ हो जाता तो फिर प्रियल को कौन बचाता। निक खुद से ही बात कर रहा था। जब ट्रक ड्राइवर आगे निकल गया तो उसे महसूस हुआ कि यहां टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, तो वो वापस उसी तेजी से गाड़ी चलाकर घर आया। निक जब घर पहुंचा तो रात के 11:30 बज रहे थे। अपार्टमेंट में लगभग सभी लोग सोने जा चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। निक जल्दी से भागकर अपने घर की ओर बढ़ा। प्रियल सोने जा रहे थे। उसने निक को ऐसे हड़बड़ाहट में भागते हुए देखा। प्रियल ने कहा, इन्हें क्या हुआ होगा, जब देखो जल्दी में रहते हैं। जाकर पूछूं क्या, लेकिन बहुत गुस्से में लग रहे हैं। एक काम करती हूँ, 10-15 मिनट इंतजार कर लेती हूँ, उसके बाद जाकर पूछती हूँ कि क्या हुआ। घर पर वो सभी बैठकर निक के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। निक भागकर जल्दी से घर के अंदर गया। अंदर जाकर उसने देखा कि सभी लोग बात कर रहे थे। जेनी ने कहा, क्या हुआ तुझे निक, भागकर तो ऐसे आ रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। निक ने जब प्रियल को वहां पर बैठा हुआ देखा तो वो जल्दी से प्रियल के पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। प्रियल खुद को निक से दूर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन निक ने उसे इतना टाइटली पकड़ रखा था कि वो चाहकर भी खुद को निक से अलग नहीं कर पा रही थी। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ निक, सब ठीक तो है ना। प्रियल को सही सलामत देखकर निक की आंखों में आंसू आ गए। प्रियल, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, अगर तुम घर आ गई थी तो मुझे तो बताना चाहिए था ना। तुम्हें नहीं पता मैं कितना घबरा गया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रह पाता। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, तुम एक बार के लिए जन्नत बाजार के आसपास भी मत जाना, निक ने रोते हुए कहा। क्या हुआ आपको, आप रो रहे हो, और अचानक से जन्नत कहाँ से बीच में आ गया, कहीं वहां फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई ना, प्रियल ने निक से अलग होकर पूछा। अचानक निक को रूपाली की बात याद आई और उसने खुद को सामान्य करते हुए कहा, एक मिनट, तुम यहाँ हो तो वहां कौन है। उन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि निक किस बारे में बात कर रहा था। रॉन ने कहा, निक तुम क्या बोल रहे हो, क्लियरली बताओगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ये यहाँ है तो वहां कौन है, कौन कहाँ है और क्यों है। अगर प्रियल यहाँ है तो वहां जन्नत बाजार में रूपाली और सुनहरी के पास कौन है। ओ गॉड, कहीं फुलवा तो नहीं, अगर प्रियल को पता चला तो ये वहां पर जाने की जिद करेगी, मुझे मिस्टर मुखर्जी से बात करनी होगी, निक ने सोचा। प्रियल ने कहा, अब चुप क्यों हो गए, बताओगे कि क्या हुआ। निक ने कहा, कुछ नहीं हुआ, रॉन, अर्जुन और एमा, मुझे तुम तीनों से बहुत जरूरी बात करनी है, और जैन कहाँ है, उसे भी बुलवाने को, वो शायद बाथरूम में होगा, मैं बुलाता हूँ उसे। तुम्हें जो बात करनी है वो अगर मिशन से जुड़ी हुई है तो हम पास वाले घर में चलते हैं, अर्जुन ने कहा। वे सब वहां से जाने लगे कि तभी प्रियल उनके पास दौड़कर आई। प्रियल ने कहा, मैं भी इस मिशन का हिस्सा हूँ, आप लोग मुझसे ऐसे बात नहीं छुपा सकते हो, ये तुमसे जुड़ा हुआ नहीं है, तो बेवजह की जिद मत करो, चुपचाप यहाँ कमरे में बैठो, निक ने आंखें दिखाकर कहा। प्रियल ने कहा, लेकिन मैं, निक ने गुस्से में चिल्लाया, प्रियल अंदर जाओ, मैं सच में कोई भी बहस या लड़ाई के मूड में नहीं हूँ, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तुम इन सबसे दूर रहोगे तो ज्यादा सही रहेगा, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें कमरे में बंद करना पड़ेगा। प्रियल निक से कुछ कहती उससे पहले ही वो पास वाले घर में चला गया और उसके पीछे पीछे अर्जुन, रॉन, एमा और जैन भी आ गए। दूसरे वाले घर में अर्जुन, रॉन, एमा और जैन निक के साथ थे। अभी कुछ देर पहले जो हुआ उससे वो तीनों हैरान थे। अर्जुन ने कहा, निक तुम प्रियल के साथ सच में बहुत रूठ थे अभी, ऐसा क्या हुआ जो तुम इतने घबराए हुए हो। तुम लोग घबराने की बात कर रहे हो, मेरी आज जान जाते जाते बची है, तुम्हें नहीं पता पिछले 40 मिनट में मेरे ऊपर क्या बीती है। जन्नत बाजार से रूपाली और सुनहरी का कॉल आया था कि उन्होंने उस दिन भागे हुए उन दो बच्चियों में से किसी एक को पकड़ लिया है, फुलवा को तो हमने सेफ जगह पहुंचाया था, तो बची प्रियल, मुझे लगा वो बाहर गई है तो उसे किसी ने देख लिया होगा और पकड़कर वापस जन्नत बाजार ले गए होंगे। रॉन ने कहा, लेकिन प्रियल तो 2 घंटे होते ही वापस आ गई थी, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम्हें कॉल भी किया था लेकिन तुम्हारा फोन नहीं लगा, तो हम लगा कि तुम कहीं रास्ते में होंगे। लेकिन भाई एक बार मिस्टर मुखर्जी से कंफर्म कर लेते हैं कि फुलवा अभी भी उस एनजीओ में है, या उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया ना, हो सकता है उसे वो लोग किडनैप करके वापस ले गए हों, जैन ने सुझाव दिया। जैसे ही निक मिस्टर मुखर्जी को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल उठाया, उतने में मिस्टर मुखर्जी का कॉल सामने से आ गया। उसने कॉल पिक करके फोन का स्पीकर ऑन कर दिया। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, सर एक बैड न्यूज है, याद है उस दिन मिस शर्मा के साथ हमने एक बच्ची का भी रेस्क्यू किया था और उसे एक एनजीओ में पहुंचाया था, आज उस एनजीओ पर रेड पड़ी है, वहां पर इलीगल तरीके से प्रोस्टिट्यूशन हो रहा था। निक ने पूछा, और अब वो बच्ची कहाँ है।
वो बच्ची यहाँ से गायब है सर, शायद कोई उसे वापस जन्नत बाजार ले गया। रूपाली ने कहा भी था कि उनके अंडर में एक एनजीओ भी है, लेकिन उसने मुझे नाम नहीं बताया था। अगर नाम बता देती तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। मिस्टर मुखर्जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि फुलवा को किसी सेफ जगह पर पहुंचाना है, लेकिन सबकी वजह से काफी गुस्सा था। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, सॉरी सर, ये एनजीओ बहुत रेप्यूटेड था, पता नहीं था कि यहाँ पर भी इस तरह के काम थे। ठीक है, मैं देखता हूँ उस बच्ची को वहाँ से कैसे बाहर निकाला जाए। मिस्टर मुखर्जी से बात करके निक ने कॉल कट कर दिया। वहाँ वो सभी फुलवा के पकड़े जाने की बात सुनकर टेंशन में आ गए। रॉन ने कहा, अगर प्रियल को पता चला तो जरूर जन्नत बाजार जाने की जिद करेगी। हाँ, वो उस बच्ची से बहुत कनेक्टेड भी है, अर्जुन बोला। निक ने कहा, प्रियल को कोई नहीं बताएगा कि फुलवा वापस जन्नत बाजार में पहुंच चुकी है। मैं जन्नत बाजार जा रहा हूँ इससे पहले कि वहाँ कोई अनहोनी हो। अर्जुन और जैन, मिस्टर मुखर्जी को तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, तो तुम दोनों वहाँ जाओ। एमा ने कहा, मैं प्रियल को देखती हूँ। नहीं, उससे भी जरूरी है कि तुम एजेंसी ऑफिस जाकर एनजीओ से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। चाहो तो अपने साथ एमा को भी ले जा सकती हो। रॉन, तुम मेरे साथ चलोगे? जिनी के साथ यहाँ परी है, वो देख लेगी उसे। रॉन ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है चलते हैं, लेकिन प्रियल को पता ना चले इसके लिए हमें जिनी और परी को तो बताना ही पड़ेगा। निक ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और कहा, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? एमा ने पूछा। निक ने धीरे से कहा, वहां देखो, जिनी खड़ी है। उस लड़की की नजर हमेशा यहाँ पर आने जाने वाले लोगों पर ही रहती है। मैं उसे बोल दूंगा कि वो ध्यान रखेगी कि प्रियल बाहर ना आए, शायद वो हमारी हेल्प कर सकती है, लेकिन उसे इन्वॉल्व करना होगा, जैन ने पूछा। डोंट वरी, मैं उसे बिना कुछ बताए भी हैंडल कर लूंगा, निक ने कहा।
सबने अपना काम समझकर निक के दिए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। निक जन्नत बाजार जाने से पहले जिनी के पास गया। जिनी ने कहा, अरे आज आप खुद हमारे घर आए हो, कुछ काम था क्या? तुम्हारे घर में कोई और नहीं है क्या? निक ने पूछा। हमारे बाबा, मेरे डैड हैं, वो सो चुके हैं, निक ने कहा। तुम्हें भी इस वक्त तक सो जाना चाहिए था। अरे हम दोपहर में काफ़ी देर सो लिए थे, तो अब हमें नींद नहीं आ रही है, उसने साफ झूठ बोला, निक ने कहा। ये तो अच्छा है। एक बात बताओ, तुम क्या यहाँ हर आने जाने वाले पर नज़र रखती हो? हमें नए लोगों से मिलना और उन्हें देखना पसंद है, तो बस खिड़की से देखते रहते हैं, निक ने अपना दूसरा नंबर उसे दिया और कहा। जिनी, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। याद है दो दिन पहले तुम मेरे घर पर एक लड़की से मिली थी? जिनी ने कहा, हाँ वो नौकरानी, मेरी फ्रेंड है वो। तुम सभी आने जाने वालों पर नज़र रखती हो ना, तो आज भी तुम्हें सुबह तक यही करना है, अगर तुम्हें नींद नहीं आई तो। नहीं, मैं आपका काम कर दूंगी, जिनी ने झट से हाँ कह दिया। ओके, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन आता जाता है। एंड वन मोर थिंग, अगर वो लड़की घर से बाहर कदम भी रखे तो तुम मुझे कॉल करोगी, ओके? लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इसकी एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें बाद में दूंगा, अभी जो बोला है उतना ही करना है, कहकर निक वापस दूसरे वाले घर में चला गया। वहां से वो दोनों जन्नत बाजार जाने के लिए निकल पड़े। रात के 12:30 बज रहे थे। जन्नत बाजार की सभी लड़कियां अपने अपने काम पर जा चुकी थीं और हमेशा की तरह वहां पर ज्यादा चहल पहल नहीं थी। गली में कुछ औरतें खड़ी थीं जो कि अपने कस्टमर का वेट कर रही थीं। रॉन और निक जन्नत बाजार में गए तो रूपाली और सुनहरी हाथ में चाबुक लिए हुए उन्हीं के आने का इंतजार कर रही थी। फुलवा उनके सामने खड़ी थी। फुलवा डर के मारे कांप रही थी। निक को उसकी हालत देखकर उन दोनों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उस वक्त कुछ कर भी नहीं पा रहा था। रूपाली अपने हाथ का चाबुक मारने के लिए फुलवा की ओर बढ़ी, लेकिन निक बीच में अपना हाथ कर किया और उसे पकड़ लिया। इससे निक के हाथ पर भी चोट लग गई। सुनहरी ने कहा, क्या साहब, आप क्यों बीच में आए? इसे थोड़ा मारने तो दो, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। इसे थोड़ा तोड़ेंगे तभी तो इसकी वो दीदी दौड़े दौड़े आएगी, निक ने कहा। तुम लोगों को कितनी बार मना किया है कि इन लड़कियों को मारा मत करो। अरे और भी तो तरीके हैं सजा देने के, इन्हें मारोगी तो फ्यूचर में ये किसी काम की नहीं रहेगी, रूपाली ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा। वैसे बोल तो आप सही रहे हो साहब, क्यों ना हम जन्नत बाजार में कल सुबह जलसा रखवाएं, पूरे कोलकाता को पता हो कि अगर जन्नत बाजार में किसी लड़की को पहली बार बेचा जाए तो। रॉन ने हैरानी से कहा, लेकिन अभी तो ये बच्ची है, सुनहरी ने कहा। कोई बच्ची बच्ची नहीं है, पूरे 14 साल की हो गई है, देखा जाए तो बिल्कुल सही उम्र है। सही कह रही है ताई, कल ही इसका सौदा करती हूँ, तब इसकी भी अकल अच्छे से ठिकाने आ जाएगी और इसकी दीदी की भी, रूपाली ने क्रूर मुस्कुराहट के साथ कहा। तब तक इसे कमरे में बंद कर दो और बाहर किसी को रखवाले के लिए छोड़ दो, सुनहरी ने आदेश दिया। उसके कहते ही रूपाली घसीटते हुए फुलवा को कमरे में ले गई और उसे वहां बंद कर दिया। निक और रॉन चुपचाप से वो करता हुआ देख रहे थे। इस वक्त उन दोनों को कुछ भी कहना या समझाना उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती थी, बस यही सोचकर दोनों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा।